दिल्ली लिकर स्कैम में क्या हो रहा है?
मैक्सिमम सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लिकर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलिगेशन लगा दिया कि इसमें धांधली हो रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है. दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि ये जो पैसा आ रहा है ये गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, आप इस मिसयूजिंग इट फॉर कैंपेनिंग पर्पसेस इन गोवा एंड पंजाब. इसमें अरविंद केजरीवाल की गलती क्या है? कोर्ट ने समन्स भेजे थे, 9-10 समन्स भेजे थे. अरविंद केजरीवाल डिड नॉट गो सेइंग कि जो समन्स थे उसकी रीजन स्पेसिफाइड नहीं थे. यू सी इलेक्शंस, उसमें तुम्हारा स्टेट का हेड तुमको चाहिए होता है एपिसेंटर पे, टेबल पे, कि वो स्ट्रेटजीज बना रहे ये करना है, कैंपेनिंग ऐसे करनी है, एंड ही इज इन जेल. सो यू हैव कट हिम ऑफ ऑफ एवरीथिंग.
उसकी टाइमिंग बहुत स्ट्रेटजिक थी. पतंजलि का केस क्या है? पतंजलि की इतनी लक क्यों रही है?
तो वन ऑफ दीज एड जिसमें ना उसने क्या था, डायबिटीज, हाईली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उन्होंने बोला था कि हम तुमको क्योर कर सकते हैं. एंड द लॉ बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम ऐसा कोई एड बना ही नहीं सकते, ना प्रिवेंशन का ना क्योर का. कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि कोरोनिल करके उन्होंने टैबलेट निकाली थी एंड दे सेड WHO सर्टिफिकेशन.
देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना, और अब हमको 150 से ज्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है.
चलो लगाते तो सच तो होना चाहिए. देयर वाज नो सर्टिफिकेशन, ओनली
इलेक्टोरल बॉन्ड. क्या है केस ये?
एक कंपनी पहले ऐसा था कि इट कुड ओनली डोनेट सम परसेंट ऑफ इट्स प्रॉफिट. इस बार देयर वाज नो कैप, सो इवन अ कंपनी हु वाज अर्निंग ओनली 100 crores वाज डोनेटिंग 450 crores.
आज का ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज़ फॉलो दिस शो. मेरे नाम के नीचे फॉलो बटन होगा, उसे दबा दीजिए, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड एट द सेम टाइम मेरी पूरी टीम का मोटिवेशन हाई होता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर एपिसोड्स लाते रहेंगे ताकि आप कम से कम समय में एक बेहतर इंसान और एक बेहतर लीडर बन सकें. आज का जो एपिसोड है अपने सारे परिवार वालों के साथ देखना, क्योंकि इंडिया के जो सारे बड़े बड़े केसेस और जजमेंट्स हैं जो आज की तारीख में इम्पॉर्टेंट है, उन सब के बारे में हमने आज बात करी है इस एपिसोड में. जैसे कि क्या सच में पतंजलि ने स्कैम किया? अगर नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे क्यों पड़ा है? क्या है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की कॉन्ट्रोवर्सी के पीछे का सच? वॉट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड लोग उसके अगेंस्ट क्यों हैं? लूपहोल्स क्या हैं हिंदू मैरिज में एंड कोर्ट मैरिजेस में? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब आज की हमारी गेस्ट प्रिया जैन ने दिया है. शी इज द फाउंडर ऑफ फिनोलॉजी लीगल. एंजॉय द शो. पतंजलि का केस क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? आपने पढ़ा है पतंजलि वाला केस? तो पतंजलि का केस क्या है? पतंजलि की इतनी लक क्यों रही है ऑल ऑफ अ सडन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपकी जो अपॉलॉजी है वो इस पेपर से भी कम की कीमत की है? लाइक दैट स्टेटमेंट इज वेरी बोल्ड एंड बिग, और मीडिया में देना इतना बड़ा. सो वॉट क्या हो रहा है पतंजलि के साथ जहाँ पे उनकी अपॉलॉजी पेपर की कम की कीमत की?
तो अलॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन दिस केस, और थोड़ा समझना पड़ेगा कैसी चीज़ें हो रही है. ठीक है, एक तो आई मेड अ वीडियो ऑन इट पतंजलि वाला एंड और मुझे लगा था पीपल विल सपोर्ट इट कि हाँ सही किया सुप्रीम कोर्ट ने. भाई तुमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही नहीं देती है? जब जजमेंट देती है तो तुमको लगता है कि पतंजलि को साइडलाइन क्यों कर दिए, इतने सारे कॉपरेट्स हो गए? अरे भाई कर तो रही है, करके क्रेडिट दो जब वेन इट्स ड्यू करके.
क्या लोग चिढ़ रहे हैं कि पतंजलि के साथ क्यों?
हाँ, तो इसलिए कि इंडियन ब्रांड के पीछे क्यों लग रहे हो तुम? बॉर्नविटा को क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? किसी और को क्यों नहीं बोल रहे हो? सो आई टेल यू हाउ इट हैपेंड वॉज, ये पहली बार नहीं था जब पतंजलि ने किया था. तो ऐसा होता है कि दिस डिबेट इज नॉट अराउंड आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, मॉडर्न साइंस, है ही नहीं. लॉ अपना है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा है. वो ये बोलता है कि आप कुछ बीमारियों के बारे में एड्स बना ही नहीं सकते हो. एड्स का हो गया, BP का हो गया, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप क्योर कर सकते हो या फिर प्रिवेंट कर सकते हो. तो वन ऑफ दीज एड्स जिसमें ना उसने किया था डायबिटीज, हाईली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उन्होंने बोला था कि हम जो इंसुलिन पे थे कि हम तुमको क्योर कर सकते हैं. एंड द लॉ बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम ऐसा कोई एड बना ही नहीं सकते, ना प्रिवेंशन का ना क्योर का. एंड दे वर अर्जिंग पीपल टू स्टॉप यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन. तो वो लोग जो जा रहे थे डॉक्टर्स के पास वो जाना बंद कर दिया. अब तो वो लोग जो इंसुलिन यूज, तो वेन इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड नोबल प्राइज मिला था. तो समवन हु कैन क्योर इट उसको भी मिलना चाहिए. तो दे मेड अ प्रॉपर एड, सब कुछ हुआ. तो दे वर प्रमोटिंग आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेद की सारी चीज़ें, पर मॉडर्न मेडिसिन को वो नीचा दिखा रहे थे. बहुत बार ये सारी चीज़ें हुई थी, उनको नोटिसेस गए थे कि यू शुड नॉट बी डूइंग दिस. फिर अपने कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि कोरोनिल करके उन्होंने टैबलेट निकाली थी एंड दे सेड WHO सर्टिफिकेशन. WHO इज नॉट अ मेडिकल बॉडी, उसका सर्टिफिकेशन कोई वैल्यू नहीं है. चलो लगा दे तो सच तो होना चाहिए. देर वॉज नो सर्टिफिकेशन, ओनली nothing, blatant lie, nothing of that sort. और लोग ले रहे थे, मतलब
उसमें WHO का उन्होंने ऐसी स्टैंप लगा दिया बिना WHO की परमिशन,
देयर वाज नथिंग। और मेरे को बता, इतने सारे लोग थे जो क्या बोलते हैं इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवा रहे थे ये सोच के कि हम आयुर्वेद से ट्रीट हो जाएंगे, एंड देयर वाज नथिंग इन इट। नेपाल ब्लैकलिस्टेड पतंजलि इन 2022। तो FSSAI, हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों बाट लगा रही है? पहला तो उसको इतनी बार, 5-6 बार और भी बोल चुका था तुमको नहीं करना चाहिए, वो हर बार अपोलोजाइज करता था पर कुछ नहीं करता था। अब FSSAI क्या करता है, ये कंपनी के ऊपर तो लगाता है ये ओनर्स कि तुम नहीं करोगे, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी डालता है कि तुम्हारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको बोलो रेगुलर चेक्स करे, सारी चीज़ें करे। तो लाइसेंसिंग चेक्स तक खूब सारे हो रहे थे, जैसे उनका जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें फ्लॉ निकल रहा था, काउ घी उसमें फ्लॉ निकल रहा था, जो उनका
उनके काउ घी में क्या फ्लॉ निकला,
अडल्टर था या फिर कुछ तो निकला था। फिर जो उनका मैगी है उसमें परमिसेबल लिमिट ऑफ ऐश का ट्रिपल द क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बहुत सारे फ्लॉज हो रहे थे, बट उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। देन सुप्रीम कोर्ट उनको बुला भी थे, फिर वो नहीं आया, वो अपोलॉजी भेज रहे थे। देन सुप्रीम कोर्ट हैड इट कि तुम्हारा खत्म करो करके, ये हो क्या रहा है करके।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया कि आओ पहले बताओ, जवाब दो कि तुम ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इग्नोर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये स्टेट गवर्नमेंट और पतंजलि दोनों आओ आप।
बिकॉज और फिर मेरे को ये लगता है कि अ कंपैरिशन ऑफ पतंजलि और बॉर्नविटा कैन नॉट बी डन, बिकॉज वन हेल्थ ड्रिंक, एक तो हेल्थ ड्रिंक का कोई डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ ड्रिंक, एंड सेकेंड इज मार्केटिंग इटसेल्फ एज अ मेडिसिन। तो मेडिसिन और समथिंग ऑप्शनल को कंपेयर नहीं कर सकते, एक को आप रिलीजियसली ले रहे हो, एक को आप ऑप्शनल ले रहे हो। तो द ओनर्स ऑन पतंजलि विल डेफिनेटली बी मोर, जो वाट लगनी चाहिए उसको फटकार लगनी चाहिए, डेफिनेटली ज़्यादा होनी ही चाहिए और सही भी हो रहा है। एंड आई विल से अगर ये सिप्ला भी करती, नोवार्टिस भी करते, बहुत सारे केसेस में रैनबैक्सी वाले केसेस में, बहुत सारे केसेस में उनको भी लगी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पतंजलि की लग रही है, उनकी साइलेंट में लग गई थी, उनकी थोड़ी जोर से लग
पब्लिक में,
हाँ, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में तो जोर शोर से किए थे। नो अदर एलोपैथिक ब्रांड और आयुर्वेदिक ब्रांड हैज डन इट लाइक पतंजलि। तो तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सुनोगे भी, तो ऐसा कुछ बायसनेस का स्कोप ही नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग गुड टू द पीपल
कि वो उनको बोल रही है कि तुम लोगों को बहकाओ मत गलत चीजें लिख के।
इससे ना अच्छी चीज ये होगी कि इवन इफ पीपल आर नॉट लाइकिंग कि क्यों हो रहा है पता नहीं, इससे भी बहुत अच्छी चीज आएगी। जो ये लॉ है ना FSSAI, ये क्या बोलती है कि तुमको 6 महीने का पनिशमेंट मिल जाएगा या फिर हल्का सा फाइन। अगर इंडिया में कोई भी चीज़ हिट होती है, करोड़ों लोग कंज्यूमर है, तुम करोड़ों कमा रहे हो, तुम 20,000 का फाइन दे दोगे तो क्या ही होगा। तो द लॉज हैव टू बी स्ट्रिंजेंट इन दिस एरिया। तो इन सब से यही फर्क पड़ेगा कि FSSAI अब स्ट्रिक्ट होगी करके।
तो कमिंग बैक टू, अब लोग बोल रहे हैं बॉर्नविटा को क्यों नहीं बोल रहे हो, तो बॉर्नविटा को तो भी अनाउंस कर दिया कि हेल्थ ड्रिंक नहीं होगा, फूड फार्मा ऑल द वे,
रेवांत
रेवांत किल्ड इट, ऑल कूडोस टू हिम, ही मेड,
ही गॉट अ ग्रेट आर्टिकल बॉर्नविटा के बारे में। सुप्रीम कोर्ट फिर से FSSAI के ऊपर गई है कि तुम हेल्थ ड्रिंक को डिफाइन तो करो, देयर इज नो कैटेगरी व्हिच डिफाइंस व्हाट इज अ हेल्थ ड्रिंक, इट्स जस्ट टर्म, तो कोई भी हेल्थ ड्रिंक लगा सकता है,
मतलब हेल्थ ड्रिंक एक स्कैम है,
इट मींस नथिंग। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहे कि यू डिफाइन इट।
पर टेल मी, जो क्लेम्स होते हैं उसको क्यों नहीं कोर्ट बैन करता है? जैसे कॉम्प्लान एक क्लेम करता था कि लंबा कर देगा, राइट, सालों साल मेरे घर वालों ने मुझे हॉर्लिक्स छोड़वा के कॉम्प्लान पिलाया। आई यूज टू नॉट लाइक कॉम्प्लान, आई यूज टू लव हॉर्लिक्स, एंड वी लाइक, मेरे को हॉर्लिक्स चाहिए, मुझे टॉलर शार्पर स्ट्रॉन्गर तीनों बनना है यार, मुझे क्यों सिर्फ टॉलर। तो अब ऐसे उन्होंने क्लेम किया, क्या ये प्रूवन है कि वो टॉल करता है? नहीं
नहीं है।
तो फिर क्यों, कैसे क्लेम कर सकते हैं?
तो क्या होता है, ये तुम्हारी FSSAI वाली एजेंसी, ये सारी बॉडीज आती है, तो अपना लॉ में ना यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि लेजिस्लेटर्स का काम है लॉ बनाना, देन कम्स द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, जिनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो अपने लॉ बना दिया FSSAI का, अपने पूरा लॉ बना दिया, सब कुछ सही है, अब उसको इम्प्लीमेंट तो लोग करेंगे ना। इफ देर इज अ लूप होल कमिंग, यू पुट इट इन द पार्लियामेंट, तो इट्स नॉट एक्चुअली द काम ऑफ द लेजिस्लेटर। जैसे LGBTQ वाली चीज, अब उसमें लॉ बना, लीगल मैरिज को सैंक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकती यार, वो पार्लियामेंट को करना है। तो लोगों को लगता है लॉ हो गया मतलब पूरा तुम्हारा लेजिस्लेटर का काम हो गया, एग्जीक्यूटिव भी तो आ जाते हैं इसमें, तुम्हारी पार्लियामेंट है क्यों? सुप्रीम कोर्ट का तो काम रिव्यू करने का है मेनली, वो बनाने थोड़ा आ जाएगी, फिर पार्लियामेंट है ही क्यों अपनी।
ओके, वापस समझाओ मुझे थोड़ा सा एक बेसिक टर्म्स में।
ठीक है,
एक लॉ है, ठीक है, अब ये लॉ है कि आप बच्चों को कुछ गलत प्रमोट नहीं कर सकते, कुछ भी जंक नहीं दे सकते, एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये कैसे बनता है,
ठीक है,
कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन बनाता है, सब एक एक करके समझो।
तो इंडिया में
इजी लैंग्वेज में, जैसे मेरे दादा को समझ में आ जाए।
ठीक है, तो अपने पास अपनी पार्लियामेंट है जिसको अपन 60,000 करोड़ का खर्चा करके, उससे ज्यादा का खर्चा करके इस साल इलेक्शंस करवाने वाले, सबको अपॉइंट करने वाले.
उनका 60,000 करोड़ का खर्चा करके हम इलेक्शन में उन्हें अपॉइंट करने वाले.
अपनी तेरे मेरे वोट की 700-700 रुपए की कीमत है, 2019 में थी, अभी बढ़ गई होगी. तो अपन वोट करके इनको लगाते हैं, बैठाते हैं सिर्फ इंडिया के लिए बेटर लॉज बनाने के लिए, बेटर पॉलिसीज बनाने के लिए. उसके बाद ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो लॉज बना रहे हैं, वो सही बना रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम जुडिशरी का है.
हम जुडिशरी क्या,
जुडिशरी आपके सुप्रीम कोर्ट, सारी कोर्ट्स वगैरह हो गए. हमको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ही काम है लॉ बनाने का, ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का मेन काम रिव्यू करना है
कि सही है कि नहीं.
हाँ, तो ऑल आर पैरेलल, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो गई, ऑल आर पैरेलल. तो पार्लियामेंट लॉज बनाती है, तुम चैलेंज, जैसे आधार कार्ड जजमेंट वाला कुछ भी आया, फिर कुछ भी अगर कोई लॉ आ रहा है, फार्म लॉज अगर हम ले लेते हैं, तो पार्लियामेंट ने फार्म लॉज बनाए, फार्म लॉज को चैलेंज करोगे सुप्रीम कोर्ट में, इफ यू डोंट अग्री विद इट, एंड द सुप्रीम कोर्ट विल से कि हाँ वो सही है, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं है. तो इट ओनली गिव्स अ टिक, मेन काम उसका वही है, पर लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट
का.
अब ये जो बच्चों के लिए क्लेम्स वाली चीज हो गई, उसके लिए हमने एक एजेंसी बना के रखी हुई है. अब अगर वो एजेंसी ही टूथलेस है, वो एक्शन ले ही नहीं पा रही है, देन द पार्लियामेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट. तुम बाय लॉ के हिसाब, अगर तुम बोलोगे फॉर एग्जांपल पेट्स के हिसाब से, क्रुएल्टी के हिसाब से ले लो, इफ यू अगर तुम गाय को मारो, कुत्ते को मारो, 50 रुपए का फाइन है. तो लॉ तो है, ऐसा नहीं कि लॉ नहीं, और 50 रुपए का फाइन नहीं करेगा तो कोर्ट तुमको बोलेगी 50 रुपए भरो. पर उस लॉ को तुम ह्यूमन लेवल पे लेके आना तो पार्लियामेंट का काम है ना. तो इट इज द वर्क ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, हर कोई वैसा नहीं हो रहा है. तो पार्लियामेंट, इसलिए मेरे को लगता है अभी सबसे ज्यादा वोटर्स, एक बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स होने चाहिए, एंड देव गॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अपन सब क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ. भाई तूने वोट देते वक्त सोचा था कि 2047 का प्लान क्या है, फिर अपन का नेक्स्ट 5 साल की क्या पॉलिसी चाहिए? डू यू हैव दोज पॉलिसीज? बट कुछ आ जाएगी तो उसको जस्ट एज अ ट्रेंड यू हैव टू ट्रोल दैट थिंग.
इससे मुझे ये बताओ कि अभी आपने ये पढ़ा दिल्ली में क्या हो रहा है,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला?
नहीं नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो
दिल्ली लिकर स्कैम वाला.
हाँ, दिल्ली लिकर स्कैम में क्या हो रहा है,
तो
जहाँ पे दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया ईडी ने, लाइक इज इट ऑल रिलेटेड?
एवरीथिंग. ओके, तो देखिए ना, 10 साल पूरा 10 साल ऐसा लगता है कि सब कुछ रिलेटेड है. एवरीथिंग इज चेस गेम. कुछ पावर्स होती है जो सेंटर के पास होती है. सो वी हैव 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में. उसमें सब में सब्जेक्ट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है. तो जैसे पुलिस आ गया, वो स्टेट देखेगी. एग्रीकल्चर हो गया तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, उसमें स्टेट और ये दोनों लिखी. इसलिए फार्म लॉज में इतने फट्टे हुए थे क्योंकि स्टेट का भी तो सेव होना चाहिए, सेंटर कैसे ले सकते. एजुकेशन अगेन कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों को देखना ऐसे से लेकर. तो दिल्ली में पहला केस चला 3-4 साल 2 साल पहले ऐसा कुछ, दिल्ली में केस स्टार्ट हुआ कि दिल्ली में जो सारी सर्विसेज हैं ये किसके कंट्रोल में रहेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो सेंटर अपॉइंट करता है, या चीफ मिनिस्टर की जो स्टेट अपॉइंट करता है. तो यू हैव टू पावर स्ट्रगल्स विच डज नॉट हैपन इन नॉर्मल स्टेट. तो जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो गवर्नर हो गया जो सेंटर अपॉइंट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर. बट देयर इज अ क्लियर डिविजन की
चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा. चीफ मिनिस्टर के पास ही मोस्टली
पावर्स होती है. तो स्टेट इज स्टेट के हाथ में वैसा वाला. पर दिल्ली में क्वेश्चन ये उठा कि ये जो सारी सर्विसेज हैं तुम्हारे, पुलिस
स्टेट नहीं है,
यूनियन टेरिटरी. तो आपकी जो ये सारी पुलिस हो गया, लैंड हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये सारी चीजें, और दिल्ली से एपी सेंटर, तो इनको लेके डिसीजंस कौन बनाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब तुम्हारा सेंटर, या फिर लोगों ने जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है वो. तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट सेड कि हाँ ये जो सारी पावर्स है, सारी की सारी पावर्स लेफ्टिनेंट, नहीं, सारी की सारी पावर्स स्टेट के पास रहेगी. सिर्फ 3 पावर्स कुछ थी, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड. इन 3 के मामले में अब गवर्नर, ऐसा लॉ आया, सब कुछ हुआ, तो फाइनल ये हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल रही थी इस जजमेंट में. एंड दे पास्ड अ लॉ, एनसीटी लॉ करके कुछ पास किया, जिसमें द पावर वॉज ट्रांसफर्ड अगेन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर कि नहीं, दिल्ली में जितनी भी सर्विसेज है उनको लेके जो पावर होगी.
जैसे क्या?
तो पुलिस को लेके कि पुलिस की कहाँ की रहेगी, कैसी रहेगी, किस चीज़ में एक्शन ले सकती है, कहाँ नहीं कर सकती है. लैंड को लेके कि एम्बेसी कहाँ बननी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ बन, ऑल ऑफ दिस सारी पावर्स सेंटर लेगा, ना कि स्टेट लेगा. ये जजमेंट सेटल हो गया. दिस वॉज अलग इंस्टेंस. अभी हम आते हैं दिल्ली लिकर पॉलिसी में. तो क्या होता है, मैक्सिमम सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लिकर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, वो ही टैक्स लगाते हैं, वो ही उनका करते हैं. तो दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू कुछ 4,500-4,500 करोड़ का आ रहा था, एंड आप मेड दिस पॉलिसी कि वो एक ऐसा लिए, दिल्ली लिकर पॉलिसी लेके आया जिसमें वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे. सो द आइडिया बिहाइंड इट वेरी सिंपल बिजनेस प्रोपोजिशन. जैसे आपका स्टेट तो केरला हो गया, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट, बैंगलोर देखो तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है लिकर से, क्योंकि आप 50% 60% टैक्स लगाते हो तो अच्छा खासा पैसा मिलता है.
प्राइवेट प्लेयर लाना मतलब,
तो मतलब जो शराब भट्टियां होती है वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, वो प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं उसको चलाने के लिए.
तो अभी हर जगह गवर्नमेंट ही चलाती है?
गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट देती है लाइसेंसेस, गवर्नमेंट के प्लेयर्स रहते हैं, टेंडर्स होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं.
ओके, तो अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर आके टेंडर्स दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर आके डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा दारू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा,
कितना डिस्काउंट देना है एमआरपी पे. ऑल ऑफ दिस हैव टू मेन ऑब्जेक्टिव्स. एक तो ये कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा करना था उनको, जिस वजह से उन्होंने 2 बजे तक या 3 बजे तक दुकान खुली रह सकती है, होम डिलीवरी ऑफ लिकर स्टार्ट कर दिया, एमआरपी पे आप डिस्काउंट कर सकते हो. और दूसरा उनका था कि उनको एक्साइज रेवेन्यू जो 4,500 करोड़ था उसको 10,000 करोड़ लेके जाना था. ये सब सही हुआ, सब कुछ पास हो गया, सब कुछ सही चल रहा है. अब इसके बाद होते हैं पंजाब के इलेक्शन और गोवा के इलेक्शन, जिसमें आपकी विक्ट्री रही है फिर ऐसा कुछ. एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलिगेशन लगा दिया कि इसमें धांधली हो रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है. तो जिनको टेंडर मिल रहे हैं वो फेवरेटिज्म की वजह से मिल रहे हैं, या फिर उनको अनड्यू एडवांटेजेस मिल रहे हैं लोकेशन का, फिर किसी चीज़ का, एक ये लगाया. दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि ये जो पैसा आ रहा है ये गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास नहीं आ रहा है, आप इस मिस यूजिंग इट फॉर कैंपेनिंग पर्पजेज इन गोवा एंड पंजाब में. तो ये एलिगेशन लगा दिया.
ओके, सो दिल्ली में जो दारू से पैसा इकट्ठा हो रहा है वो पैसा आप यूज कर रहा है आप गवर्नमेंट बनाने में पंजाब में एंड गोवा में.
सो यू हैव वन, तो टीम सोचते जाना ठीक है. दिस अभी जो एलिगेशन लगा ना, तो ये पैसे धांधली का एलिगेशन लगा है, विच इज मनी लॉन्ड्रिंग. तो वन ऑफ द डार्केस्ट लॉज दैट इंडिया हैज, ड्रेकोनियन लॉ बोलते, सेडिशन था एक, वो तो हट गया. दूसरा है अपना पीएमएलए का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इट्स वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्ट. ठीक है, तो उन्होंने एलिगेशन भी ऐसा लगाया पैसे धांधली वाला, विच इज डन इन. तो ये आपका लॉ है पीएमएलए, और पीएमएलए का एक्शन लेती है ईडी. तो एक्शन वो लेती है. अब इंडिया के जो सारे लॉज है वो मानते हैं यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो तुमको पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है पीएमएलए, क्योंकि ये पैसे की धांधली से रिलेट किया, ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी, ओरिजिन नहीं बताया, सोर्स नहीं बताया, कुछ भी किया. इफ इवन इफ अ स्लाइटेस्ट ट्रेस इज फाउंड, आपको पीएमएलए में बुक कर लिया जाएगा. पीएमएलए का ऑब्जेक्टिव है यू आर गिल्टी अनलेस 100% इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते. तो जब तक आप पूरा ये सैटिस्फाई नहीं कर देते हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि मैंने नहीं ही किया है, देयर इज नॉट इवन 1% डाउट, वो आपको नहीं छोड़ेंगे. सो इसलिए पीएमएलए में अगर कोई फंसता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए पूछा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल रही, बिकॉज पीएमएलए में आपको बेल नहीं मिलती है क्योंकि इट इज दैट सीरियस एन ऑफेंस, ये नॉन बेलेबल होता है, आपको बेल नहीं मिल सकती.
तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये पीएमएलए एलिगेशन है.
तो अब ये तो मेरे ख्याल से आज ही हियरिंग थी, ऐसा मंडे को हियरिंग.
किसने लगाया ये केस?
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, सेंटर ने लगाया ये.
अच्छा, सेंट्रल ने लगाया,
बिकॉज़ द एक्साइज डिपार्टमेंट, सो द एवरीथिंग इज अलेज्ड टिल द कोर्ट डज नॉट प्रूव इट. तो दे अलेज दैट द रेवेन्यू जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और जो टेंडर्स अगर भी उन्होंने लिए वो पैसे खा के किए या फिर फेवरेटिज्म से किए. सो इट वाज नॉट अ फेयर सिस्टम. तो इफ द गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग टेंडर्स की कौन, तो इट हैज टू बी फेयर, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. तो इवन वन पेपर मिसस्लिप हुआ, कुछ हुआ, वो सारी चीज हो जाएंगी. तो अब ये होता है कि पुलिस कस्टडी जो होती है वो 15 दिन की होती है, फिर नेक्स्ट 15 डेज उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, 60-90 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दी, वो आप 60-90 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो. तो तब तक उसको बेल नहीं ही मिल सकती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स इतना ऐसा कि पीएमएलए का लग गया.
बट इससे
अब अब आई टोल्ड यू अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट.
यस,
तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या था कि हमारी इलेक्शन की डेट आती है और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है आप पार्टी फंड यूटिलाइज करते हो. अब अगर किसी पे, अरविंद केजरीवाल पे या फिर किसी सोदिया पे, जिस पे भी लगता है पीएमएलए का, तो ऑल द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग जो लगता है कि शायद ये धांधले से खरीदी गई है, यू कैन सीज इट, यू कैन फ्रीज ऑल एसेट्स. तो तुम्हारा घर, सब चीजें, तुम कैंपेनिंग के लिए पार्टी फंड, खुद का पैसा तो कोई लगाया नहीं पार्टी फंडिंग में, पर तुम सब कुछ फ्रीज कर सकते हो.
तो पार्टी फंड थोड़ी फ्रीज कर सकते,
नहीं कर सकते, बट इन अ वे एवरीथिंग हैज बीन फ्रोजन ना. अगर तुमको बड़ा सा बड़ा लॉयर भी रखना है, कुछ भी करना है, सब कुछ पार्टी की कैपेसिटी से होता है. बट इन अ वे इतने क्रूशियल पॉइंट पे, यू सी इलेक्शंस, उसमें तुम्हारा स्टेट का हेड तुमको चाहिए होता है एपिसेंटर पे, टेबल पे, कि वो स्ट्रैटेजीज बना रहे, ये करना है, कैंपेनिंग ऐसी करनी है, एंड ही इज इन जेल. सो यू कट हिम ऑफ ऑफ एवरीथिंग.
तो इसकी टाइमिंग बहुत स्ट्रेटेजिक थी.
अब इसमें अरविंद केजरीवाल की गलती क्या है, तो आई विल टेल यू दूसरा साइड, कि ये सारी चीजें हुई, कोर्ट ने समन्स भेजे थे 9-10 समन्स भेजे थे,
मतलब कोर्ट ने 9-10 बार उनको नोटिस
बुलाया था कि आओ, ईडी ने भी भेजा था कि आओ। अरविंद केजरीवाल डिड नॉट गो सेइंग कि जो समन्स थे उसके रीजन स्पेसिफाइड नहीं थे कि आर यू कॉलिंग मी एज अ विटनेस या फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे या फिर कुछ भी बुला रहे हो, तो शायद ये पहले चीजें हो जाती तो 9-10 बार। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि तुम बेवकूफ है क्या, तुमको 9-10 बार बुला रहे हो, आ क्यों डेरो करके।
तो क्योंकि वो गए नहीं इसकी वजह से ये।
हाँ, अब अरविंद केजरीवाल का कहना भी ये कि 200 से ज्यादा रेड्स पड़ चुकी है, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है एंड अभी तक आपने एक भी प्रूफ नहीं लाए देने के लिए कि क्या वो पॉलिसी गलत थी या उसके कोई अंडियो बेनिफिशरीज थे या फिर एक भी पैसा मैंने उस पर से लिया है, तो देर इज नो प्रूफ अभी तक बाहर नहीं आया। तो ईडी इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन कि कॉमन मैन को अभी बताया कि आया कि नहीं, तो केस जब खत्म होगा तब होगा। तो दोनों साइड्स का ये है, सो लॉज आर क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए ना हर चीज बहुत धीरे धीरे होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट बहुत फटाफट काम क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करिए, क्योंकि हल्का सा एक डॉक्यूमेंट मिस एंड यू हैव सो मेनी तलवारें लटकती हुई तुम्हारे ऊपर।
ओके, फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस, राइट, कि अब आम जनता को तो इस पर ऐसा लगता है कि ये दो पार्टीज के बीच में
राइवलरी
है, इसकी वजह से एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह की तरह, राइट, एंड डू यू थिंक दिस हैज समथिंग टू डू विद इट?
So I think when you think of politics, your first picture comes is of competition.
हाँ, ये competition ने करवाया है।
और यार ये जो अभी हो रहा है ये कुछ भी नहीं है, इससे पहले की इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री तुम देखो, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर को सजा हो रही है, सब कुछ हो रही है। अपन इससे और तो अपन तो और माहिर खिलाड़ियों को देख चुके हैं, तो पीपल शुड बी अवेयर, पीपल इन पोजिशन शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स लाइक दिस टू बी हैपन। पॉलिटिक्स इज अ चेस गेम, आपको पता होना चाहिए अगर क्रूशल टाइम आ रहा है तो हाउ टू यूज लॉज इन योर फेवर। If you've been summoned, you go and answer it. You don't dodge it.
Interesting. Okay, coming back to electoral bond. Electoral bond. क्या है केस ये?
तो
क्या हुआ कंट्री में, इतना बवाल क्यों हो रहा है? Easy language में समझाओ ताकि एक छोटे से गांव में कोई बैठा हो तो उसे भी समझ में आ जाए।
सदियों से इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको हम फंड करते आ रहे हैं। पहले भी कंपनीज फंड करती थी, पर प्रॉब्लम ये होती थी जब भी कंपनी किसी पॉलिटिकल, लेट्स से आपने ए पार्टी को फंड कर दिया एंड दैट डेटा कम्स आउट, अब वो ए पार्टी पावर में नहीं आई और बी आ गई, तो बी तुमसे बदला लेगी, तुमको टेंडर नहीं देगी, तुमको कंसिडर नहीं करेगी, तुमको उस जगह पे लैंड नहीं देगी, ये सही बदला
कि बेटा तुमने उनको पैसे दिए थे ना, अब बदला, ठीक है।
तो दैट वॉज द प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मनी कहाँ से आ रहा है उसका सोर्स जानना भी बहुत ज़रूरी था, तो आप सब कुछ अनोनिमस नहीं रख सकते हो, वरना तो ब्लैक मनी का कुछ होगा ही नहीं। तो 2018 में अरुण जेटली देन फाइनेंस मिनिस्टर, ही प्रपोज दिस थिंग कि हमको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लानी चाहिए जिसमें ये दो जो प्रॉब्लम है, ब्लैक मनी वाली चीज़ और अनोनिमिटी मेंटेन रहे, ये दोनों चीज़ें हो जाए। कि आप जैसे ए इंसान एक पर्टिकुलर पार्टी को पैसे ट्रांसफर कर रहा है एंड इट विल ओनली रिमेन विद द बैंक, किसी और को पता नहीं चलेगा।
अच्छा,
ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक को जानने की जरूरत ही है।
हाँ, तो मतलब अगर मैंने आज बीजेपी को पैसे दिए, कांग्रेस को पैसे दिए, आपको पैसे दिए, तो सिर्फ बैंक को पता है और उस पार्टी को पता है।
हाँ,
और मुझे पता है। हाँ, आपको नहीं पता, किसी को पता नहीं।
हाँ,
और कोई पता कर भी नहीं सकता।
हाँ, अब ये अनोनिमस रखने के दो रीजन थे, एक तो उस कंपनी को बचाना कि ताकि कोई दूसरा अगर पावर में आ जाए तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए, और दूसरा ये था कि उनको लगता, तब जब प्रेजेंट किया था कि पब्लिक को जानना क्यों है, इट इज क्रूशियल चीज सबकी, अगर कोई मैं टूल बना रही, मेडिसिन बना रही, तो फॉर्मूला थोड़ा ना बताऊंगा ना सामने वाले को। ये दो रीजंस बताए गए थे, और तीसरा रीजन था ब्लैक मनी का सोर्स छुप जाएगा। अब तो उसका सिस्टम कैसे निकला था, आप SBI में जाओगे, आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो, 1,000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ तक के बॉन्ड ले सकते हो, आपको अपना नाम डिटेल्स अगर डालने पड़ेंगे। अब वो डिटेल्स कैसी थी, इफ यू मैच इट यू कैन लोकेट कि किसने दिया है और किसको गया, द बैंक कैन नो। और ये जब लॉ लाया गया था ना तब ये पक्का पता था, तो तू सोच तू डोनेट कर रहा है ये सोच के कि तेरा नाम कभी डिस्क्लोज ही नहीं होगा, एंड नाउ इट्स डिस्क्लोज्ड, तो तेरे साथ तो धोखा हुआ ना,
obviously,
और रेट्रोस्पेक्टिव हुआ, मतलब यू एक्टेड ऑन द प्रोमिस दैट दिस विल नॉट हैपन, द गवर्नमेंट इन सिंग, द पार्लियामेंट इन सिंग, और फिर वो हट गया। तो इन अ वे क्या तुम वापस उसको वापस भेजोगे पैसा की हमने, क्योंकि Had it been any other deal, अगर ये land deal होती, कुछ भी होता, तो मैं तो पैसा वापस मांगते ना, ये तूने promise भेजा।
Obviously.
No one is talking about that. कंपनियों के नाम आ गए बाहर, सब कुछ हो गया, nothing is happening. ठीक है, तो we go back to this कि ये scheme निकाली गई कि आप SBI पे आप आओगे, आपको जितने का bond लेना है आप party में दे दो।
अच्छा, और तो मैं SBI को मान लो 50 करोड़ दिए और SBI से बॉन्ड लिए और वो बॉन्ड उठा के मैं एक पार्टी को दे दूंगा।
पिछले का डिमांड था, आप वहीं पे स्लिप डिपॉजिट कर दो, वो
वहां और पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट में पैसे ले सकती है।
हाँ, तो दे गेट 15 डेज कि आप 15 डेज में पार्टी जो है वो कर सकती है, अगर नहीं गए तो पीएम केयर्स फंड में वो चले जाएगा पैसा। ये सिंपल था, सब कुछ सही चल रहा था। अब ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मैंने तेको बताया था फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, दिस इज एन NGO जो बहुत केसेस लगी। इसके पहले उनका एक बहुत अच्छा केस था जिसमें उन्होंने बोला कि हर पार्टी जिसका कैंडिडेट उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड उसको बताना पड़ेगा, विच इज अ वेरी अच्छा स्टेप। तो दिस केस ऑल्सो केम इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ ADR। तो ADR ने फाइल किया ये केस कि हमको एज अ वोटर इट इज़ आर राइट टू नो कि फंड आ कहाँ से रहा है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कैंपेनिंग कर रही है उसको कहाँ से पैसा आ रहा है। एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि जैसे उन्होंने तो ये बोल दिया था कि बाहर की कंपनीज नहीं कर सकती, चाइना नहीं कर सकती, सब नहीं कर सकती है, बट एज अ सिटीजन आई हैव दिस राइट टू नो कि पैसा आ कहाँ से रहा है, दे आर माई रिप्रेजेंटेटिव, सो वॉट आर दे डूइंग इट्स पार्ट ऑफ माई बिजनेस। और ये कुछ ऐसा नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ तो नहीं है कि तुम मुझे नहीं बता सकते हो। तो दे फाइल दिस केस, सुप्रीम कोर्ट अग्रीड कि सही बात है, एज वोटर्स यू हैव दिस राइट कि तुम्हारी पार्टी के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, सो दैट यू सो एंड वाई इज इट सही ऑल्सो। तो समझ कि मैंने आई एम द सेम पार्टी और मैंने किसी एक गवर्नमेंट को दे दिया, कंपनियों में किसको दे दिया पैसे 100 करोड़, कल को जाके मुझे ही फायदा हो रहा है, तो पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड क्वेश्चन यू कि इसी को क्यों दे रहा है, मतलब क्या पैसे से ही ऐसा हो रहा है क्या, आर यू वर्किंग फॉर देम और आर यू वर्किंग फॉर पीपल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि पैसे कहाँ आ रहे हैं और किसको जा रहे हैं। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये एक स्कीम है जिससे पैसे आते हैं, देर आर मल्ट, तो इसमें बस ये था कि ये चीज़ें अनोनिमस रहती हैं, कौन दे रहा है किसको दे रहा है वो हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप पैसे लेते हो तो सब होता है, नो वन इज क्वेश्चनिंग कि कंपनीज के पास पैसे कहाँ से आए, कुछ नहीं करते जैसे, तो यू अंडरस्टूड ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सारी चीज़ हुई। तो SBI इसमें फंसी कि तुम क्यों नहीं कर रहे थे, उसको बहुत लगी इतना फटाफट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम नेशनल बैंक को क्यों नहीं कर पा रहे हो, सारी चीज़ें बाहर आई। अब जो टॉप डोनर है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को ये हो रही थी कि, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम ये लग रही थी कि व्हेन अरुण जेटली वाज प्रपोजिंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड वाली चीज़, ही सेड कि कितना हमने कितनी मुश्किल से कैसा फॉर्मूला निकाला जिसमें ऑपोजिशन भी कमा पा रही है। तो दिस वाज अ स्कीम जिसमें सिर्फ बीजेपी को पैसा मिलेगा ऐसा नहीं, एनीवन हु वांट्स टू डोनेट टू एनीबॉडी कैन डोनेट टू एनीबॉडी। एंड दैट्स व्हाई ये सुप्रीम कोर्ट वाली चीज के पहले किसी को प्रॉब्लम हो भी नहीं रही थी। व्हाई वाज द ऑपोजिशन सेड कि वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे वर तो इन कैश इन कैश। तो अगर 50%
मतलब ऑपोजिशन ने पहले कभी प्रॉब्लम दिखाई नहीं।
हाँ, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि बीजेपी ने सही किया, हम सेइंग कि एवरीवन इज हैंड इन ग्लव्स, वैसे
मतलब सारे लोग खुश थे।
हाँ, पैसा आ रहा है तो बढ़िया चल रहा है, सबका कैंपेनिंग सीजन चल रहा है, कोई बाद में देखेंगे, प्रॉब्लम है तो हम बाद में देश का सोचेंगे। तो 50% कुछ अमाउंट बीजेपी को आया, देन इट वॉज कांग्रेस एंड बाकी सारी पार्टीज आई। अब उसमें जो टॉप डोनर्स थे ना, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है वो प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गया, पहले भी था ये चीज़। 2018 में चेंज बस ये किया गया कि मेजर चेंज कि एक कंपनी पहले ऐसा था कि इट कुड ओनली डोनेट सम परसेंट ऑफ इट्स प्रॉफिट और ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो अगर मैं 100 रुपये कमा रही हूँ मैं मैक्सिमम 100 रुपये ही दे सकती हूँ, या फिर 50 रुपये ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इस बार देयर वॉज नो कैप, सो इवन अ कंपनी हु वॉज अर्निंग ओनली 100 करोड़ was donating 450 crores. तो that cap was removed, which again became a problem कि फिर ये आया कहाँ से?
पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
हाँ,
हाँ, जिस कंपनी के पास पैसे ही 100 करोड़ आ रहे हैं, वो 400 करोड़ कैसे दे रही है?
तो इसमें major revolution हुआ कि there is this lottery company, Santiago Martini, मेरे को नाम ध्यान नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा donation दिए, they are the top donors. अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स सेंट्रल लेवल पे छोड़ के अगर हम वैसे भी देखें जो स्टेट लेवल इलेक्शन पे चलते हैं, तो साउथ में दे आर द टॉप डोनर्स। पहले भी ये था कि तमिलनाडु जो थी वो पहले डिस्क्लोज करती थी कि हमको किसने डोनेट किया, तो एवरीथिंग वॉज ट्रांसपेरेंट। सो इंडियंस रिकोगनाइज ट्रांसपेरेंसी, दे वैल्यू ट्रांसपेरेंसी। पर अब क्या होगा इज अ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को बस ये लग रहा कि इफ अ प्रोमिस वॉज मेड दैट नेम्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड एंड नाउ द नेम्स आर डिस्क्लोज्ड, तो क्या ये गलत नहीं है कंपनीज के पॉइंट से कि फंसे तो हैं, तो वैसे वाली चीज़ है। दूसरा ये कि हमेशा ना इंडियंस को बहुत ही वल्नरेबल माना जाता है कि कैसे हम UPI पिन नहीं शेयर करो, क्रेडिट कार्ड पिन नहीं शेयर करो, UA एडवाइजरी लगा देंगे कि गलत सीन ना देख लो, तो हमको ना बहुत वल्नरेबल माना जाता है कि कोई भी फायदा उठा लेता है। बट सुप्रीम कोर्ट इज रिकॉग्नाइजिंग नहीं, इंडियंस आर इंटेलिजेंट, दे ऑट टू नो कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। तुम ऐसा मत हो कि वो क्या करेंगे जानेंगे, तुम बताओ उनको। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमको इंटेलिजेंट माना जा रहा है।
तो अब जैसे जिन जिन कंपनीज ने पैसे दिए,
हाँ, अब सो पीएमएलए वाली चीज, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरी चीज हुई है, अगर कोई भी ब्लैक मनी ट्रेस होता है डोनर के पॉइंट से, डोनी के पॉइंट से, तो वो भी पीएमएलए में ट्राई किया जाएगा, एंड जो भी फंसेंगे उनकी बेल मिलना भी उतनी मुश्किल रहेगी।
तो मतलब जिसने पैसा लिया और जिसने दिया,
इफ द ब्लैक मनी इज इन्वॉल्वड,
इफ लेट्स से, बट लेट्स से ओके, जैसे वो गेमिंग कंपनी पार्ट, वो सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी, सबसे बड़ी डोनर, राइट, उन्होंने सबसे ज्यादा डोनेट किसको किया?
अभी सबको किया है।
हाँ, वो देखा मैंने। हाँ, उसने सबसे
सब, तो मेरे को ये भी लगता है, क्या डिड दे नो कि नाम डिस्क्लोज होगा?
नहीं, बट यूजुअली सारे बड़े प्लेयर्स सबको डोनेट करते हैं,
तो मेरे को वही पूछना कि व्हाई वर दे डूइंग इट।
नो, सारे बड़े प्लेयर्स सबको डोनेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोबेबिलिटी कि अगर तीन पार्टी है, उनको पता है कि जो जीतने वाले तीनों में से, तीनों नेशनल पार्टी अगर जीतनी है, चार पार्टी है, पांच पार्टी है, व्हाटएवर, वो सबको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पैसे देती है। किसी को 50 देंगे, किसी को 10 देंगे, किसी को 5 देंगे, किसी को 40 देंगे, बट सबको पैसे देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोबेबिलिटी पे चांसेस रहना है।
सो द कंपनीज वांटेड द पार्टीज टू नो दैट दे आर डोनेटिंग टू देम। तो इसमें क्विड प्रो क्यो का क्वेश्चन आता है।
नहीं नहीं, एक ओके, कंपनीज यूजुअली डोनेट सबको ताकि कल पे अगर किसी भी चांस की वजह से कोई दूसरी पार्टी जीत गई तो बोले सर मैं तो आपके लिए था ही, तब भी था, आप बोलो ना अगले 5 साल भी मैं हूँ आपके लिए।
तो मैं तो यही
That's the, because they want to make sure कि their work is smoothly handled.
तो my question is this, कि हमने पूरे लेवल पे ट्रांसपेरेंट क्यों ही नहीं रखा था कि द पार्टीज ऑल्सो डो नॉट नो कि किसने डोनेट किया, क्योंकि उनको जान के करना भी क्या है? नहीं मतलब आई एम कमिंग टू एन आंसर कि इज इट ऑल क्विड प्रो क्यो, एक हाथ ले एक हाथ दे वाली चीज हो रही क्या? अगर मैं तुझे बताऊंगी नहीं, मैं तुझे 100 रुपए, मेरे को देखो बता के करना क्या है? ये क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टी कंपनी पैसा देना दे उससे कुछ नहीं कर रही है, सीएसआर होगा वो होगा। तो हमने सिर्फ पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंट क्यों, मतलब बैन क्यों किया कि नहीं डिस्क्लोज करेंगे, हमने पार्टीज के लिए भी क्यों नहीं ऐसे कर दिया?
क्योंकि नो दैट वाज योर फंडामेंटल फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। बहुत लोग होंगे जो इसमें न्यू प्लेयर्स होंगे, तो न्यू प्लेयर्स को नहीं पता कि हर पार्टी को प्रमोट, हर पार्टी को पैसे देने हैं, वो किसी एक आध पार्टी को पैसे दे रहे हैं, तो उन्हें फंसना नहीं है प्रॉब्लम में। इसकी वजह से उनको सेव करने के लिए दे आर डूइंग दिस।
पर अदानी अगर बीजेपी को दे रहा है तो वाई शुड बीजेपी नो अदानी ने पैसे दिए? व्हाट हैज बीजेपी टू डू विद अदानी?
बट ओके, सो बीजेपी गेट्स टू नो,
वही तो मैं बता रही हूँ कि अगर कोई कंपनी तीनों में पैसे दे रही है तो समझ रहे मैं कैसे बोले, अगर मैं तीनों में पैसे दे रही हूँ तो क्या मैं ये सोच रही हूँ कि आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम नहीं जाए? पर आगे जाके प्रॉब्लम तब होगी ना जब तीनों को पता होगा कि मैंने तीनों को इक्वल पैसे दिया। व्हाट इफ आई पुट इट मेक इट कि नहीं ही पता चले, वैसा कुछ समझा?
हाँ, समझ गया। बट ये अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में तो यही हो रहा था ना।
हाँ, तो
नहीं
मतलब,
पता चलेगा
तो मतलब,
बट जैसे ओके, मैं कंपनी हूँ, मुझे पता है कि मैंने आपको भी दिया है, पार्टी बी को भी दिया है, पार्टी सी को भी दिया है।
हाँ, क्यों
पार्टी ए बी सी को थोड़ी पता है?
तो फिर तो तेरे तीनों को दिया क्यों?
क्योंकि मुझे ये रिस्क है कि कल पे अगर एक्स पार्टी चले गई तो मैं बी के साथ भी तो रहूं।
तो मतलब ये लॉ में प्रॉमिस किया ही, मतलब हाउ, मतलब तुझे पता था कि कांग्रेस बीजेपी सबको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि तू किसको डोनेट कर रहा है नहीं कर रहा है?
नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि नहीं पता चलेगा। क्योंकि मेरे तो मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू यही लग रहा है ना कि बाहर ही नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन, पर जो बाहर आ गई,
पर जो डेटा आया है, मैं
उसमें तो दिख गया।
मैं सेफ रहने के लिए 100-100 करोड़ इसीलिए इसी इरादे से दूंगी जब मुझे पता है कि आगे जाके इनको पता चलेगा ही।
मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे ये पता है कि किसी किसी स्टेट में एक्स पार्टी है, किसी किसी स्टेट में ये पार्टी है, मेरा ऑपरेशन हर स्टेट में। लेकिन अगर सेंट्रल को, मेरे सेंट्रल मुझसे खुन्नस खा गया तो मेरा स्टेट में भी ऑपरेशन पूरा बेकार कर देगा। एज अ बिजनेस पर्सन मैं ये चाहूंगा कि सेंट्रल तो मैं स्मूथ करूं ही करूं, इसलिए मेरा सबसे बड़ा पाए सेंट्रल को जाएगा, बाकी छोटा छोटा पाए स्टेट को भी जाएगा, मेरे को हर जगह ऑपरेट करना है।
आई हैव दिस थ्योरी कि कंपनीज को पता था कि पॉलिटिकल पार्टी विल हैव अ वे आउट ऑफ नोइंग कि किसने किसको डोनेट किया,
इसीलिए वो सबको,
क्योंकि एलिगेशन इलेक्टोरल डज नॉट स्टॉप एट हियर कि ये ट्रांसपेरेंट क्यों था या फिर क्यों था। अब सेकेंड एलिगेशन ये लगा इलेक्टोरल बॉन्ड पे कि वो कंपनीज जिन्होंने डोनेट किया सबसे ज्यादा वो कंपनीज रही है जिनपे ईडी के रेड्स लग रहे थे, ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, एंड बिफोर और आफ्टर डोनेटिंग दिस लार्ज सम ऑफ मनी उनका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया। दिस इज अगेन एन एलिगेशन, ये अलग चलेगा,
ये एलिगेशन लगा है,
ये लगा है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए वो क्विड प्रो क्यो वाली जो चीज आ रही है ना, वो इसलिए कि अगर आप पे रेड लगी,
बट जस्ट टू स्टॉप हियर, मोस्टली लार्जली सारी लार्ज कंपनीज पे कहीं ना कहीं ईडी आईटी सबके नोटिसेस लगे होते हैं। रेड बहुत अलग चीज हो गई, तो आई एम श्योर कि इन सब पे भी नोटिस हैं, तो लार्जली नोटिसेस होते ही होते हैं, बिकॉज वो एजेंसीज का काम ही होता है कि इनको गलत काम करने से रोकना, एंड इतनी लार्ज ऑपरेशंस में बहुत बार आप बिना इंटेंशन के भी, बैड इंटेंशन के भी आप कुछ ना कुछ कर देते हो, तो आप वो सॉल्व करते ही रहते हो. सो इट्स वेरी रॉन्ग टू से कि सारी कंपनीज में ऐसा हो रहा था, वो ऐसा हो रहा था.
आई आल्सो बिलीव
जस्ट ये मोस्टली हर कंपनी के साथ होता है. कितनी क्लीन से क्लीन कंपनी होती है उनमें कोई ना कोई एजेंसी का होगा. लेट्स से टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एंड मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनीज इन द कंट्री. आई एम श्योर उनके ऊपर भी 25 एजेंसीज ने कुछ ना कुछ नोटिस भेजती होंगी डेली बेसिस पे.
100% अग्री. मेरे हिसाब से भी ये सही तरीका है. बट द एलिगेशन इज द मोमेंट दे मेड डोनेशन इट स्टॉप, द इन्वेस्टिगेशन स्टॉप. दैट इज द एलिगेशन.
इन्वेस्ट कैसे, ये कैसे प्रूव कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन स्टॉप क्या लेटर भेज दिया उन्होंने? एक 10 लेटर लो और दूसरे दिन ईडी ने लेटर भेज दिया, चलो अब तुम्हें छोड़ दिया.
सो दैट इज द
वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम.
सो दैट इज द एलिगेशन कि द मोमेंट दे मेड द डोनेशन इट स्टॉप्ड. That is a major allegation.
ये से वैसे बोल रहे हैं कि करेंगे हम proof.
So, दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में भी एक क्रॉस आया था. तो जो एक जिसको टेंडर मिला था, दिल्ली लिकर पॉलिसी इलेक्टोरल बॉन्ड, एक इंसान जिसको टेंडर मिला था ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स और फिर वो छूट गया था उस इन्वेस्टिगेशन से. सो ऑल ऑफ दिस इज अगेन एलिगेशन, बट द मेजर पॉइंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड वॉज दिस कि द कंपनीज वर डोनेटिंग एनोनिमसली एंड डोनेटिंग अ लार्जर सम ऑफ मनी जो उनका रेवेन्यू था.
ओके हाँ, तो इस पे मेरा क्वेश्चन था कि मान लो एक्स पार्टी को मिल गया, जैसे आपको मिल गया, बीजेपी को मिल गया, ओके उनको पैसे मिले, उनको तो पता चल गया कि इस कंपनी से पैसे आए, बट मे बी उनको ये थोड़ी पता उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है. वो कंपनी जिन्होंने 100 करोड़ कमा के 400 करोड़ डोनेट कर दिए, राइट, बट जो पार्टी रिसीव कर रही है, लेट्स से कांग्रेस रिसीव कर रही है या आप कर रही है, बीजेपी कर रही है, उन्हें थोड़ी पता कि ये 400 करोड़ वो लेके आए, तो Why will they be blamed?
इसलिए electoral bonds as a scheme
is... PM, वो, जो ये money laundering वाला game है, तो अगर money laundering वाली किसी को भी अगर allegation लगेगा money laundering का, तो जिसपे भी trace हो गया black money, party को भी भुगतना पड़ेगा और donor को भी भुगतना पड़ेगा. बट हो सकता है donor और donor ही गलती हो, party को पता ही नहीं हो black money हो. I'm just asking, maybe party को पता हो.
तो अगर कहीं से भी अनड्यू एडवांटेज का सिनेरियो सेटल हो जाता है कि जिस कंपनी ने पैसे दिए, टेंडर विदाउट एनी मेरिट उसी को मिलता है. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जिसमें एयरपोर्ट का या फिर किसी चीज का मिलता है. इफ दैट इज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज इनफ टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन अंडर पीएमएलए.
ओके,
कि आपने कुछ लेके किया. सो इन पॉलिटिक्स आप कितना भी पैसा ले सकते हो विदाउट गिविंग देम अ गारंटी कि इसके बदले आप कुछ करोगे. दैट इज प्रोहिबिटेड. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कीम में प्रॉब्लम इज नॉट कि उसने 100 करोड़ दे दिया या 450 करोड़ दे दिया. ये एलिगेशन लगाना कि जिन जिनको मिला उनको ही टेंडर मिले थे, देवर द मेजर बेनिफिशरीज, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम.
कि जिन्होंने डोनेट किया उन्हें अनड्यू एडवांटेज मिला.
पर नाउ दैट आई थिंक, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? आप पार्टी फंडिंग बंद तो कर नहीं सकते हो, बिकॉज कंपनीज विल डोनेट वॉट एवर दे वॉन्ट टू डोनेट.
और वो डोनेट इसी होप में करती है कि हमारा पूरी कंट्री में ऑपरेशन स्मूथ हो. तो
अगेन कमिटी इज सेटअप की
वो फिर कभी, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो और कमिटी कर रहे हो, आई एम श्योर हर पार्टी में ही मिलेगा.
हाँ, तो मेरे को वही रहता कि वी फिगर्ड आउट अ प्रॉब्लम कि हाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बट विल यू लेट दिस कंटिन्यू और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन.
इफ यू स्टॉप देन किसी का इलेक्शन के लिए पैसे नहीं होगा, फिर टैक्सपेयर का पैसा जाएगा.
हाँ, वो स्टॉप अप कर ही नहीं सकते.
हाँ, तो टैक्सपेयर का पैसा जाएगा रूलिंग पार्टी में भी, नॉन रूलिंग पार्टी में भी. जो नॉन रूलिंग पार्टी वो अपनी एक स्टेट से पूरा निचोड़ लेगी, नेशनल कैंपेन करना है, राइट. जैसे कर्नाटका में अगर कांग्रेस है तो कर्नाटका से भी निकाल लेगी नेशनल करना है, बीजेपी हर स्टेट से निकाले, लाइक व्हाटएवर, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप. तो अगर स्टेट से या तो टैक्सपेयर का पैसा जाएगा या कुछ बड़ी कंपनीज का पैसा जाएगा, और कुछ बड़ी कंपनीज का अगर पैसा जाता है तो उन्हें अनड्यू एडवांटेज इज, आई मीन ह्यूमन बिहेवियर लेवल पे बहुत बेसिक लॉजिक लग रहा है कि मिलेगा. आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी की, चलो यार आप बस मुझे अच्छे लग रहे हो इसलिए मैं दे देता हूँ, कोई भी बिजनेसमैन या कैपिटलिस्ट ऐसे थोड़ी डाल देगा.
तो यूएस वगैरह में भी यही होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कंपनी देती है दे हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर, और जो पार्टी रिसीव, तो अपने आप ही बहुत सारे जो इसके
तो अनड्यू एडवांटेज मिलते होंगे लोगों को.
नॉट क्लियरली आप कर ही नहीं सकते हो सारी चीजें.
क्लियरली यू कांट, बट यू सी अनदर थिंग इज, अगेन इस पॉडकास्ट पे मैं बात कर रहा था एक बहुत स्ट्रांग आईएएस ऑफिसर से, और मैंने उनसे ये पूछा कि टेंडर अगर गवर्नमेंट को किसी ने पैसे दे दिए, किसी बड़ी कंपनी ने, और बहुत पैसे दे दिए, तो क्या टेंडर उन्हें 100% मिल जाएगा? तो उसने बोला नहीं. लेकिन उस इंसान को ये पता चल जाएगा कि इस टेंडर के लिए, जो चेक होने के लिए, ये 12 चेकबॉक्सेस जरूरी है. तो 12 चेकबॉक्सेस आप अपनी कंपनी को करवा के आगे बढ़ जाओ. तो आपको ही मिलेगा. नाउ अब उसको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर देना, बट मिल तो अभी भी मेरिट पे ही रहा है ना. ऐसा थोड़ी कि किसी किसी केस में बिना मेरिट के मिल जाता होगा, पर यूएस में भी यही होता है.
पहले बताते हैं,
आई नो लॉट ऑफ पीपल इन यूएस गवर्नमेंट
जो आपको तो मेरा बस वही क्वेश्चन है कि तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों को प्रॉब्लम क्या थी कि कंपनीज को एडवांटेज हुआ क्योंकि वो तो पहले भी हो ही रहा था क्या. एंड हाँ, मेन प्रॉब्लम इज द एंटायर गेम इज ऑफ एलिगेशन. जो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम है, जो अरविंद केजरीवाल जेल पे है, एवरीथिंग इज ऑन एलिगेशन अभी तक. तो अगर मैं बोल
रही हूँ
तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी बोल रही हूँ कि एलिगेशन लगा है कि कंपनी कर रही है, एंड एलिगेशन इज इनफ to start a case under PML. You only need a spec, क्योंकि वो change हो गया ना.
तो you are saying electoral bonds के जो ये transparency आई है,
investigations will widespread investigations will start.
तो हर party पे,
पहले तो companies पे start होगी.
हाँ, मतलब हर company पे, हर company के बाद फिर हर party पे.
अब वो
क्योंकि हर जगह underdog.
अब अगर नहीं होता start, तो फिर I will be safe to presume कि क्या opposition भी beneficiary है. Because this is a nice opportunity to start a case of PMLA.
But wo, see, here's my question. मैं एक normal citizen जैसे question पूछ रहा हूँ. Maybe जितने लोग law को समझते हैं बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा advanced understanding या technical understanding हो इस case के बारे में, वो मुझे बोली कैसे सवाल पूछ रहा है. I'm asking from a very simple common man perspective. ठीक है, common man जैसे एक company है जिस को मान लो अनड्यू एडवांटेज मिला, ठीक है. उस कंपनी ने बीजेपी को भी पैसे दिए, कांग्रेस को भी पैसे दिए, आपको भी पैसे दिए, मान लो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को भी पैसे दिए, सबको पैसे दिए. तो अब किसकी वजह से अनड्यू एडवांटेज मिला?
तो इसलिए कब
और किस कौन सी पार्टी को हेल्ड रिस्पॉन्सिबल मानोगे आप?
तो,
क्योंकि वो कंपनी आई एम श्योर जो इतनी बड़ी होगी और इतनी जगह दे रही होगी, उसके ऑपरेशंस मध्य प्रदेश में भी होंगे, कर्नाटका में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे. तो क्या आप शिवसेना को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल मानोगे कि बीजेपी किसको रिस्पॉन्सिबल मानोगे?
तो डू यू अग्री इन सेइंग कि दिस इज अ वेरी क्लेवर स्कीम ऑफ थिंग्स जिसमें कोई है ही नहीं आपको फाइट करने के लिए, बिकॉज एवरीवन इज अ बेनिफिशियरी.
हाँ, तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है, व्हाट आई एम आस्किंग,
बिकॉज दे आर नॉट. तो यहाँ पे अब हो गया सुप्रीम कोर्ट वाली चीज कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगी वील यूज इट अगेंस्ट इट. ऑन लेवल ग्राउंड ऑपोजिशन कुछ करना नहीं चाह रही है बिकॉज दे आर ऑल्सो द बेनिफिशरीज. तो उनको बस सही इंसान मिल गया सुप्रीम कोर्ट वाट लगा रही करके. और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कौन लेके आया था? वो तो बीजेपी लेके आई थी. तो बस वो पावर प्ले डायनेमिक लगा के रखा है लेवल प्ले में. जैसे दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कीम है, इट वॉज द आप गवर्नमेंट दैट डिड इट और बीजेपी एलिगेशन लगा रही है, क्लियर है इसमें. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्योंकि सब बेनिफिशियरी है, तो वो सिर्फ डिपेंडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट बस तबाह कर दे सबको. वैसा आर यू गेटिंग इट?
आई गेट इट. सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस केस के फेवर में नहीं है, आगे नहीं बढ़ाना चाहती
इलेक्टोरल बॉन्ड वाला? अभी तक तो नहीं दिखा, इट्स ओनली द सुप्रीम कोर्ट हु इज बैशिंग इट.
ओके, so Congress is not bashing this.
Now that the Supreme Court is doing it, सब उसके bandwagon में लग गए, सब उसके shoulder पे लग गए.
Exactly.
But what happened before it? मतलब इससे पहले तुम क्यों encash कर रहे थे? You had a great opportunity. तो liquor policy के 6 महीने के अंदर आने तक से ही 6 महीने हुआ था सब कुछ आने के, and everything started because you found it गलत. How is it that this was going on for so long and only now it is being raised?
So I bond तो 2018 से चल रहा है. आज तक बाकी सारी पार्टियों ने इसको गलत क्यों नहीं बोला, जो ऑल ऑफ सडन अब सारी पार्टीज गलत बोल रही हैं?
सो आई एम नॉट सेइंग कि व्हिच पार्टी इज बेटर और वर्स, क्योंकि सबको ये लॉ को यूज कर रहे हैं एंड द कॉमन मैन इज नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, उसका कुछ नहीं हो रहा है. बट आई एम सेइंग कि देन नोइंग लॉज प्ले इन योर फेवर. यू न्यू पीएमएलए एलिगेशन पे काम कर सकता है एंड आपने सही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे सब कुछ कर लिया. व्हाई वर यू सिटिंग ऑन दिस हाउस? पैसा.
इंटरेस्टिंग, क्या 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 हो रहा है ना, कैसी कैसी चीजें हो रही है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग.
तो इसलिए डू यू अग्री इट्स अ गेम ऑफ चेस एंड लॉज?
इट इज अ गेम ऑफ चेस, इट्स क्रेजी. ओके, फिर सेकंड केस था एमएलए इम्यूनिटी केस, ये क्या है?
हाँ, तो अनदर थिंग दिस हैपेंड वाज कि ये भी बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज थी, तो आई रियलाइज कि कॉमन सेंस वाज नॉट सो कॉमन. तो दिस वाज दिस ब्राइबरी केस.
क्या है?
तो आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन आज होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि हम डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, जब इतने सारे लोग हैं हमने उनके लिए क्या किया है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, या किसी और के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन करना है कि उसने उसको टेंडर क्यों दिया, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चन उठाने के लिए भी मैं पैसे दे सकती हूँ, विच इज ब्राइबरी. अब नाउ दिस ब्राइबरी का डेफिनेशन बिफोर दिस केस वॉज डिफाइंड, कि अगर मैंने राज तुझे 50,000 रुपये दिए एंड आई वॉन्ट यू टू आस्क मेलोडी थी चॉकलेटी क्यों है, एंड इफ यू डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन इट्स नॉट ब्राइबरी. तूने मुझसे पैसे ले लिए मेलोडी थी चॉकलेटी क्यों पूछने के लिए, बट यू डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, तो इट विल नॉट अमाउंट टू ब्राइबरी. सो दिस केस केम एंड हू सेड कि अगर आपने पैसे लिए इररिस्पेक्टिव आपने क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा, इट विल बी ब्राइबरी. सो अर्लियर अ केस वॉज देयर विच सेड इट्स नॉट ब्राइबरी, दिस ईयर इट्स डिसाइडेड कि इट इज, विच शुड बी द केस.
तो ये इम्यूनिटी से क्या लेना देना?
तो इसमें ये था कि आप किसको क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विल बी इम्यून फ्रॉम इट. वो क्या क्वेश्चन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इट्स हिज बिजनेस, वैसा वाला. तो उसको इम्यूनिटी मिली हुई थी, जबकि बोला कि पैसा लेके किसी को इम्यूनिटी नहीं मिल रही, इट इज विल बी ब्राइबरी कॉमन मैन के लिए भी, तुम्हारे लिए भी.
तो इस पे जजमेंट आने वाला है इस साल?
नहीं, आ गया, इट सेट दिस, हो गया सेटल, इट इज ब्राइबरी. तो बहुत इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत एक्टिव है सुप्रीम कोर्ट अभी, सारे सही चीजें हो रही है. मैं तुझे 3 साल का ट्रेंड बताऊंगी, 3-5 साल पहले इफ यू यूज टू फ्लिप न्यूज पेपर देर विल बी 1 पैराग्राफ अबाउट सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट. नाउ यू ओपन, अब सिर्फ अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इससे पहले भी, नाउ यू सब एवरी डे देर विल बी 1 आर्टिकल फॉर सुप्रीम कोर्ट.
ओके, नाउ इलेक्टोरल फ्रीबीज केस, ये क्या है?
मैनिफेस्टोस के ऊपर ये हुआ था कि यही तो जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है आप, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने का ना मकसद ही ये था, ये लेट आया था, स्टार्टिंग से नहीं था, 1975-1977 के बाद आया है ये. तो ये पहले क्या होता था इलेक्शंस में, इसी के टाइम पर लोगों को पता था कि अभी उनकी नींद खुलेगी, हमारा जब मैनिफेस्टो जाएगा अभी वो हमको दिखेंगे, तो वो सिर्फ फ्रीबीज बांटते थे कि हम तुमको साइकिल देंगे, स्विंग मशीन देंगे, 1 लाख माफ, 2 लाख माफ, टैक्स पेयर का पैसा ही जा रहा है सब में. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यही बोलता है कि ये जो फ्रीबीज है, द डे इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस तब तक रिजल्ट आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप नई रोड बनाओगे नहीं बोल सकते हो, आप कहीं पिलर खोदोगे वो भी नहीं बोल सकते. सो एक तरीके से आप फ्री भी करने से रोक रहे हो, पर एक तरीके से डेवलपमेंट भी रुक जाता है. इसलिए क्वेश्चन आता है कि शुड इंडिया बी मूविंग टुवर्ड्स वन नेशन वन इलेक्शन वाली चीज.
क्या है वन नेशन वन इलेक्शन?
तो पहले इंडिया में यही होता था कि जो 3 टीयर्स के इलेक्शन होते हैं, आपके पंचायत लेवल के, म्यूनिसिपल लेवल के और लोकसभा इलेक्शन लेवल के, सारे एक साथ होते थे. वो इसलिए होते थे क्योंकि बहुत सारा, एक तो रिसोर्सेज लगता है, आपके स्कूल बंद होते हैं, टीचर्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, ITBP बहुत सारी पुलिस फोर्सेस सबको ही आती है सब कुछ करने के लिए. फिर बीच में ये होने लगा कि एंटी डिफेक्शन होने लगा, गवर्नमेंट गिरने लगी, कहीं पहले हो गया कहीं बाद में हो गया, उस वजह से सब हेर फेर हो गया. अब समझो कि अगर अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अभी लग गया इलेक्शन की डेट आ गई, अभी मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे म्युनिसिपल लेवल इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन की डेट आई और इलेक्शन होने तक कोई नई चीज़ नहीं हो सकती. आप अगर रोड खुद ही है तो वो खुद ही रहेगी, कहीं कुछ प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम रहेगी, कुछ नया नहीं हो सकता. तो 2 महीने तक द स्टेट एंड द सिटीजन्स विल सी नो न्यू डेवलपमेंट, क्योंकि वो स्टेट कर ही नहीं सकती है, ठीक है, ये हो गया. फिर जब लोकसभा इलेक्शंस की बारी आती है, अगेन फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स आप कुछ नया काम नहीं कर सकते, कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, कितना भी कुछ नहीं हो. तो 2-2 महीने के लिए जब पूरा का पूरा देश स्थगित हो रहा था, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोज किया, द बिल भी पास हो गया, प्रेसिडेंट हैज पास्ड इट, कि हमको करना चाहिए. नाउ पैनल डिस्कशन एंड ऑल विल स्टार्ट.
ओके, आई हैव फ्यू लास्ट क्वेश्चंस, पर ये 4-5-6 क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने बेस्ड ऑन योर कॉन्टेंट, रील्स, शॉर्ट्स, उन सबसे निकाले, जो मेरे लिए काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया. फर्स्ट चीज थी कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट ही नहीं है. इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स ऐसा नहीं बोला जाता, हॉकी है, सेंटिमेंट वाइज क्रिकेट है, पर ऐसे बाय द बुक ऐसे बोला जाता है ना कि हॉकी स्कूल में पढ़ाया जाता है, हॉकी नेशनल स्पोर्ट. इंडिया कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है,
इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया का कोई फादर ऑफ द नेशन भी नहीं, ये तीनों चीज इंडिया की नहीं है.
फादर ऑफ द नेशन तो M.K. गांधी है.
नहीं, वो एक किसी इंसान ने उनको एज अ रिस्पेक्ट बोल दिया था, तो ना इनको टाइटल्स बोलते हैं, जैसे किसी को मन महाराजा बोल दिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, PhD, डॉक्टर, इनको टाइटल्स बोलते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 बोलता है आप सिर्फ आर्मी में और एजुकेशन वगैरह की फील्ड में ही आप टाइटल्स ले सकते हो, बाकी किसी नहीं. तो एक 10 साल की बच्ची ने RTI एप्लीकेशन फाइल किया था पता कराने के लिए कि ये फादर ऑफ द नेशन कब, किसने, किसको, कौन से सन में दिया. तो द गवर्नमेंट सेड कि वी हैव नॉट कन्फर्डेड, बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी एंड लेट्स नॉट बिंग कॉन्ट्रोवर्सी ऑन द टेबल, जो जिसको डेजिग्नेटेड वैसे रहने दो, बट इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कन्फर्ड टाइटल. सो वी डोंट हैव अ नेशनल स्पोर्ट, वी डोंट,
नेशनल स्पोर्ट नहीं है तो क्यों नहीं है,
सारे स्पोर्ट्स इक्वल है, सबको ही इक्वल है. तो अपन को लगता है, तो जब क्या हुआ था, इंडिया जब नया आजाद हुआ था ना, अपन इतनी भूखमरी पॉवर्टी सबसे जूझ रहे थे एंड यू वर एसिंग इन हॉकी, तो उसका इतना व्यूअरशिप देख के वे लगा था कि हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट एंड देन क्रिकेट
बस मान लिया गया है.
एंड देन बीसीसीआई वाली चीज हुई कि बीसीसीआई इज द हाईएस्ट रनिंग और क्रेज देखते, फिर मान लिया गया था कि क्रिकेट है. वी डोंट हैव अ नेशनल स्पोर्ट, वी डोंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, नथिंग.
वाह क्रेजी. तो ये स्कूल में बुक्स में क्यों पढ़ाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट मैंने स्कूल में पढ़ा है, फादर ऑफ द नेशन मैंने स्कूल की बुक्स में पढ़ा है, मेरा एजुकेशन सिस्टम मुझे सिखा रहा है ये.
तो देख कितना बढ़िया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एक 10 साल की बच्ची यूज की थी. तो अन्ना हजारे यू हर्ड हिज नेम, तो मेनली ही वाज फेमस फॉर जन लोकपाल बिल, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर एंटी करप्शन वाला सीरीज. उससे पहले तो हिज लाइफ इज अ ग्रेट स्टोरी. मेरे को मूवी बनाना तो दो तीन लोग हैं, उसमें अन्ना हजारे एक है कि मैं मूवी बनाऊंगी. एमसी मेहता उन पर मूवी बनाने वाले, बहुत बढ़िया. तो अन्ना हजारे ने सबसे, एक तो वो आर्मी में रहे, फिर उनको गोली लग गई जिस वजह से उनको रिटायर किया सब कुछ. तो महाराष्ट्र में सबसे पहले उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाने का बोला था. उनका जो मॉडल, उन्होंने बहुत किया प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ किया, हंगर स्ट्राइक पे गए और महाराष्ट्र ने ले गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. उस एक्ट पे लूजली बेस्ड पूरे नेशन का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना. थ्रू दैट वी केम टू नो कि ऐसा है.
इंटरेस्टिंग. ओके अनदर थिंग, मुझे ये पता चला कि इंडिया में एक सिंगल मेल पेरेंट किसी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता.
तो अडॉप्शन के बहुत सारे लॉज है. तो अगर मैं चाहूँ तो मैं एक मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकती हूँ, बट अ मेल कैन नॉट, अडल्ट मेल कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड. वही सिनेरियोज देखते हुए, वल्नरेबल जैसा भी होता है, उन सारी चीज़ों के होते हुए, बिकॉज वंस यू अडॉप्टेड आप बहुत ज़्यादा क्लोज स्क्रूटनी में नहीं रख सकते हो. तो आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हुए ये लेके आते हो. बट दैट इज नॉट द वेरी शॉकिंग पार्ट. शॉकिंग पार्ट ये है कि ओनली हेट्रोसेक्सुअल कपल्स कैन अडॉप्ट, होमोसेक्सुअल्स कैन नॉट अडॉप्ट. और मेरा ये था कि मेन
मतलब कि अगर
एक लड़का और लड़की
है
तो दे कैन नॉट अडॉप्ट.
कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता.
नहीं,
इन इंडिया लड़की नथिंग,
नो दे कैन नॉट अडॉप्ट. तो क्या होता है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो. अगर आप एक मैन एंड वुमेन इन अ मैरिज है तो आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो. बट इफ इट्स द सेम सेक्स कपल, यू कैन नॉट अडॉप्ट इन इंडिया. जबकि अगर देखे बाय डिजाइन, दे आर द कैटेगरी ऑफ पीपल हु नीड इट द मोस्ट, दे कैन नॉट एंड दे डोंट नो इट ऑल्सो. बहुत लोगों को पता ही नहीं होता. सो दे स्टार्ट देयर ड्रीम्स बाय सेइंग कि ओके वी विल गो इन द रिलेशनशिप एंड वील अडॉप्ट. नहीं. सो आई सॉ,
इंडिया में नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते. तो आई सॉ अ कपल ऑफ मूवीज जिसमें ऐसा होता है कि वो लिव इन में ही रह रहे हैं, वो शादी वगैरह कर लेते हैं, बट द फीमेल एक अडॉप्ट कर लेती है विदाउट सेइंग कि शादी तो वो कर ही नहीं सकता अभी इंडिया की जो सेटिंग है. तो दे अडॉप्ट ऐसे ही करके.
तो क्यों नहीं कर सकते इंडिया में शादी जब सेम सेक्स रिलेशनशिप डिक्रिमिनलाइज कर दी है? तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते?
तो ये बहुत ही अजीब है. मुझे भी बहुत लॉजिकल स्टेप यही लगा था कि अगर आप रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि दे कैन बी ना सेम सेक्स रिलेशनशिप, लिव इन रह सकते हो, अब सालों अब सब कुछ रह सकते हो, बट यू कैन नॉट मैरी. तो मेरे को बहुत लॉजिकल स्टेप लगा था कि हाँ मैरिज रिकॉग्नाइज करनी चाहिए. द कोर्ट सेड, देखो जब मैरिज अपन बोलते हैं तो मैरिज के साथ ये सारे राइट्स आ जाते हैं, आपके इनहेरिटेंस के राइट्स आ जाते हैं, आपके प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं, सक्सेशन के, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ आ जाती है. एंड ऑल ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डू, ऑल ऑफ दिस पार्लियामेंट कैन डू. तो इफ द पार्लियामेंट पासेज अ लॉ, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट चेंज होगा, हिंदू मैरिज एक्ट चेंज होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट चेंज होगा, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एक होमोसेक्सुअल कपल है एंड हेट्रोसेक्सुअल कपल है, अब उनके ऊपर अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस, द डोमेस्टिक वायलेंस केस क्या बोलता है, फिर रेप केस कुछ भी है, उसको क्या बोलता है कि अ मैन कैन कमिट दिस क्राइम ऑन अ वुमेन. इन अ होमोसेक्सुअल कपल हाउ विल यू अप्लाई टू इट? डोमेस्टिक वायलेंस किसने किस पे किया, कौन किसको मेंटेन, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट इट्स द जॉब ऑफ द पार्लियामेंट टू डू इट.
इनहेरिटेंस किसके किसके पास जाएगा,
हाँ प्रॉपर्टी राइट्स हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीजें.
वाओ.
तो द सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया लीप लिया. मतलब वेरी फ्यू कंट्रीज हु रिकॉग्नाइज कि हम सेम सेक्स रिलेशनशिप में रह सकते हैं. नाउ इट्स द जॉब ऑफ द पार्लियामेंट टू टेक इट फॉरवर्ड.
तो उन्होंने एक स्टेप कर दिया, आगे बढ़ नहीं रहा. ओके पर टॉकिंग अबाउट मैरिजेस, अगर आपने हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से शादी कर ली, फिर उसके बाद और आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया, क्या आपको डिवोर्स फाइल करना है तो फिर उसके लिए लगता है कि नहीं वो मानी नहीं जाएगी गवर्नमेंट के नजरों में?
तो देखो हिंदू जैसे तो डाइवो व्हाट इज अ मैरिज सबके रिलीजन के हिसाब से अलग है, तो हिंदू मैरिज है सम बेसिक्स कि ये चीज अगर आपने फुलफिल की तो आपकी शादी हो गई। तो जैसे जितने फेरे बोले जाते हैं जो भी रिलीजन के हिसाब से, हाँ सप्तपदी रिलेशन रिचुअल्स फॉलो होने चाहिए, अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो योर मैरिज इज देयर, आपको कहीं रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पता इसका लूप इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं, यू मस्ट हैव सीन बहुत सारे जैसे रूरल प्लेसेस में जो दो शादियाँ करते हैं तीन शादियाँ कैसे करते हैं, तो लॉ सेज कि आपको दूसरी शादी नहीं करनी है। और शादी का मतलब क्या होगा, ये सारे सप्तपदी ये सारी चीज़ें करने का, तो अगर चार फेरे लेने तो सिर्फ तीन फेरे ले लेंगे तो वैसे तो शादी नहीं हुई ना, पर शादी तो हो गई तो आप पे केस नहीं हो सकता, करते हैं ऐसा लोग। तो इस पे भी चल रहा है कि दिस शुड चेंज। और
तो यू आर टेलिंग मी कि लोग किसी को भी फंसा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बाय टेलिंग कि ओके चार फेरे की जगह तीन ही फेरे ले लिए और फिर डिवोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर गर्ल एंड अ गाय उन दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया, शादी करने के डिसाइड पे उन्होंने सब किया, मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर, राइट, एवरीथिंग डन, बस चार की जगह तीन फेरे लिए, तो उन्हें लाइफ में डिवोर्स फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी शादी मानी नहीं गई है, तो कोई किसी पे केस नहीं कर सकता किसी भी चीज का, डाउरी का।
तो ये तो प्रॉब्लमैटिक पार्ट हो गए कि प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पर मेन प्रॉब्लम क्या कि तुम दो शादी नहीं कर सकते, दैट इज द प्रॉब्लम।
नो मतलब मैं दोनों पे आ रहा था, लाइक वन इज गेटिंग अवे, तो तुम्हारा जो इतना बड़ा प्रोसेस होता है डिवोर्स का तुम वो भी नहीं कर सकते, फाइल नहीं कर सकते क्योंकि शादी मानी नहीं गई। सेकंड इज तुम दो तीन चार शादियां कर सकते हो क्योंकि शादी नहीं हुई।
तो इसमें ना यही चल रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट शुड चेंज एनी, और बोला जाए कि ये करना चाहिए कि एनी एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग सेकंड मैरिज शुड बी मेड पनिशेबल, वैसा होना चाहिए।
पर ये कैसे प्रूफ होगा?
तो अगर आप...
किसी ने एक शादी कर ली, ठीक है, अब उसने इंटेंशन नहीं था कि दूसरी करूंगा, बाद में कर ली दूसरी आधी, फिर तीसरी कर ली आधी, फिर चौथी कर ली आधी, फिर उसमें तो चलते ही जा रहा है उसका।
तो यही पनिशेबल हो रहा है कि क्या तुम उसके साथ, एक तो अडल्ट्री भी आपका हो गया, पर दूसरा अगर आपने कोई भी एक रिचुअल परफॉर्म किया शादी के नाम का भी, तो दैट शुड बी मेड पनिशेबल। तो दैट इज द डिस्कशन गोइंग ऑन कि ये तो लोग फायदा उठा ले रहे हैं।
एग्जैक्टली।
तो जैसे गांव अगर भी कैसा था कि अगर आपको एक शादी से बच्चा नहीं हो रहा तो आप दूसरी कर लेते हो, और ताकि आप पे वो केस भी नहीं कर पाए तो आप एक रिचुअल कम कर लेते हो, ऑल ऑफ दैट।
दिस इज वाइल्ड। फिर मैरिज सर्टिफिकेट की तो वैल्यू ही नहीं रखी।
क्यों?
क्योंकि अगर हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से अगर आपकी मैरिज हो गई, या मुस्लिम ट्रेडिशन के हिसाब से आपकी मैरिज हो गई, या कोई भी ट्रेडिशन के हिसाब से मैरिज हो गई, मान लिया वो शादी, अब तो मेरे को राइट सारे वही मिलेंगे।
तो रजिस्टर्ड मैरिज इज डिफरेंट एंड मैरिज सर्टिफिकेट इज डिफरेंट।
ओके,
बोथ ऑफ दीज आर।
मैरिज सर्टिफिकेट होने से क्या फायदा है जो मुझे रजिस्टर्ड मैरिज में नहीं मिलेगी?
तो ये ना चीजें ही डिफरेंट है। तो जैसे अपन आधार कार्ड बनाते हैं, सब चॉइस सेंटर पे जाके सब कुछ कर लेते हैं, आपने शादी कर ली उसके बाद आप चॉइस सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट देते हो और वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट दे देते हैं। इट इज़ नॉट अ वैलिडिटी कि यू आर मैरिड और नॉट, इट इज़ जस्ट अ सर्टिफिकेट जिसके बाद आप और चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू परफॉर्म एज अ हिंदू मैरिज या फिर ये सारी चीज़ें, आपको कोर्ट में जाके मैरिज करनी है, तो उसको कोर्ट मैरिज बोलते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हो गई।
बट कोर्ट मैरिज, अच्छा, तो जिसने एक अपने ट्रेडिशन के हिसाब से मैरिज करी उसको कोर्ट मैरिज करना जरूरी नहीं है।
हाँ, तो कोर्ट मैरिज इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल मैरिजेस।
ओके, बट फिर लोग दोनों क्यों करते हैं,
कोर्ट मैरिज भी और ये भी? नहीं, तो अ लॉट ऑफ पीपल डू ट्रेडिशनल मैरिज और फिर वो मैरिज रजिस्टर करवाते
हैं। ओके,
वो होता है ताकि अब वो बैंक अकाउंट वगैरह जो भी चीजें हो जाती है। और बहुत सारे लोग
रजिस्टर नहीं कराए तो मैरिज सर्टिफिकेट बैंक अकाउंट वगैरह नहीं बनता।
बनता है, पर सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, सबके लिए वापस एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। दूसरा, बहुत सारे लोग तुमने देखा होगा सिर्फ रिसेप्शन थ्रो करते हैं और शादी के नाम पे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मेनली स्पेशल मैरिज एक्ट में वैसा कर लेते हैं, तुम्हारा भी हमारा फॉलो करे हमारा भी करे तो वो कर लेते हैं। बट कोर्ट मैरिज और रजिस्टर मैरिज दोनों डिफरेंट। तो रजिस्टर मैरिज इज अ डॉक्यूमेंट और कोर्ट मैरिज इज योर शादी।
Got it. Wow. ये पता ही नहीं था मुझे। This is new thing that I'm getting to know. Yo, one good thing you should tell Pranjal, I've not never told him. Yes. मैं आपके हस्बैंड से दो बार मिला हूँ लाइफ में।
तो हस्बैंड वर्ड ना डाइजेस्ट नहीं होता।
मतलब प्रांजल आपके बॉयफ्रेंड से, ठीक है। मैं दो बार मिला हूँ लाइफ में, पर मुझे इतनी I don't know why, but इतनी अच्छी वाइब्स आती
है। मुझे हर बार आती, पता है।
Exactly, like he is to me, he looks like a big brother. पता नहीं क्या ऐसी इतनी calm, composed वाइब है। और मैं दो बार मिलके मुझे लगा कि यार ये he'll be there for me.
And he is like that. Nothing gets to him. मतलब मैंने और कोई ऐसा नहीं देखा जिसका कोई enemy वाली list नहीं है, फिर I don't like वाली list हो। ही लाइक्स एवरीबॉडी एवरीबॉडी थोड़ा अजीब
है मेरे को भी है बट आई थिंक ही रिफ्लेक्ट्स दैट वाइब मुझे तो सेम मुझे बहुत ही अच्छा दोनों बार मिलके मुझे इतना अच्छा लाइक माय रिस्पेक्ट ऐसे ऐसे
तो
मैं ना उनका ज्यादा कंटेंट देखता हूँ ना मैं उनको को बहुत फॉलो करता हूँ मैं कुछ पता नहीं है मुझे उनके बारे में दो बार मिला हूँ लाइफ में और मुझे दो बार में ऐसा लग गया कि यार मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा
एंड ही लाइक्स मीटिंग पीपल मतलब हमारी शादी में शादी तो थी ही नहीं इट वाज अ गेट टुगेदर सो आई प्रपोज प्रांजल शादी के लिए तो हमने मैंने होली पार्टी बोल के 60 लोगों को बुलाया था मैंने एक्चुअली 40 बोला था व्हेन प्रांजल गेम नो सो 20-30 लोग और ऐड
ऐसे हो
गए सो व्हेन आई एम प्रपोजिंग Pranjal is calling other people. तू कहाँ है करके and even after the proposal he's just meeting everybody. So it was a school and college get together. It was not a proposal party. Same was शादी. So मेरा सिर्फ एक part था वो चल के आने का. ठीक है that was supposed to be my spotlight moment. वो भी Pranjal नाच रहा है. तो कि zoom into our video में चल रहा Pranjal बस कर जाओ.
So he stole the light.
तो मेरा ना ऐसा ऐसा होता है कि यार गो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत रिस्पेक्ट आ रही है बहुत चिड़ मच रही है उसपे फिर बहुत रिस्पेक्ट आ रही है फिर बहुत चिड़ मच रही है.
This is every day.
हाँ every day.
Every day. How cute, nice, and 12-15 years.
15 years.
15 years.
So we've lived as much years apart as together. 15-15.
Oh, you guys are 30 now. Both same age. Same school, same ऐसा भी था क्या कुछ?
हम लोग 2 मिनट दूर रहते थे एक दूसरे से जिंदगी भर.
तो मतलब घर वालों को एक्सेप्टेंस
अगर एक साल पहले हम लोग एक दूसरे से मिल लिए होते हम दोनों भाई बहन बन जाते
क्योंकि बहुत ही जल्दी
बहुत ही जल्दी मिल लेते
एंड घर वालों का एक्सेप्टेंस बहुत अर्ली आ गया
तो उसकी मम्मी पापा की लव मैरिज मेरे मम्मी पापा का वेरी सॉर्टेड था कि इट्स ओके बट ओनली कमिट टू इट जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ तो कमाने लग जाओ बट देवर ओके विद एवरीथिंग
तो बहुत जल्दी
सब तो सॉर्टेड
क्या सही है अरे 12th के बाद ही हो गया था क्या मतलब
फर्स्ट ईयर 11th क्लास में
तो फर्स्ट ईयर से घर वालों को कॉलेज में
first... ऐसा नहीं होता कि हमने खुद ही बताया था प्रिंसिपल बंक मार रहे लव लेटर पकड़ा रहे
अच्छा सब हुआ है
एक दूसरे के घर वालों के सामने दूसरे को बेल्ट पड़ रही है जब ढापड़ बन रहे सब कुछ हुआ है
Tell me about this. I wanna know. बताओ क्या हुआ ये
तो प्रांजल हमेशा से उसी स्कूल में था मैं 11th क्लास में स्कूल चेंज की थी और यहाँ पे गई थी और तब तक प्रांजल की बड़ी अच्छी हेडमास्टर मतलब हेड बॉय वाली इमेज है डिबेटर है सब कुछ एकदम ऐसे ऐसा बढ़िया बढ़िया और मैं गई एंड ही स्टार्टेड बंकिंग वो क्या बंक मारा था बहुत इंटेलिजेंट सिर्फ चाबी लगाते खुद कभी नहीं बंक मारेगा मैं बंक मारती थी फिर कोने में कहीं बैठा हुआ लड़की के साथ तो और प्रिंसिपल भी उसको नहीं भेज रही थी ना लेटर मेरे मम्मी पापा को भेज रही थी लेटर कि शी इज़ कम शी इज़ डूइंग दिस 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 हर हफ्ते मेरे मम्मी पापा आते थे सब कुछ होता था हम लोग खूब लव लेटर 100 से ज़्यादा लव लेटर लिखते थे और ये था ना उसके पास वॉलेट रहता था ना मेरे पास वॉलेट तक्के के अंदर रखते थे एक दूसरे के मम्मी पापा पकड़ लेते थे फिर बुलाते थे तो जैसे प्रांजल के घर पे 11th का रिजल्ट आया था एंड उसको मैथ से बहुत कम आया था ऐसा कुछ हुआ था मेरे को बुलाया गया था प्रदर्शनी के लिए और आंटी चौपड़ मार ही डिजर्व्स इट चलो बहुत ही बढ़िया करके फिर मेरे सामने इसको मैं रिक्शा दिला दूंगी ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा ये समोसे का ठेला लगाएगा करके अग्री अग्री
हाँ और ऐसे सामने और इसीलिए आंटी मारती थी सामने की दिखे कि आपकी वजह से ऐसा
तो मेरे सामने नहीं होता तो ये जैसे इस पर्दे के पीछे होगा तो तुमको तो कहर शॉकवेव्स आएगी करके और फिर मेरे को बोलता कि इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ाओ ना प्रणाली की कितना बढ़िया जबकि मेरा उससे कम मार्क्स आया
तो आंटी को नहीं बता सके
थोड़ा ना बता सकते ना इज्जत की बात है होने वाली बहू यार
ओके ओके 11th में डिसाइड कर लेता होने वाली बहू
इट वाज फाइनल द डे आई मेट हिम कि तू तू ही है इधर यू लिव as my husband or you're not living at all bahut hi simple tha
or you're not living at all
bol diya to bol diya wo jaise dogs ka hota na peeing territory wala your mine to mine khatam
he was like day one pe haath rakh diya to meri territory oh wow last question jo main sabse poochta hu as a lawyer do you think india paise bana sakte hain log
aaram se if you got the right skill set अगर आप डे वन में ही घुस रहे हो तो मेरे को लगता है कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ईगो मसाज हटा के लॉ स्कूल में घुसना चाहिए सो यू गो इनटू लॉ स्कूल बिकॉज यू आर पैशनेट फॉर लॉ नॉट बिकॉज यू वांट टू डू लॉ फ्रॉम अ पर्टिकुलर लॉ स्कूल उससे फर्क नहीं पड़ता
पैशनेट फॉर लॉ कैसे पता चलता है
पैशनेट फॉर लॉ
पैशन पता ही कैसे चलता है
तो क्या जब भी घर पे डिस्कशन हो रहे हैं तो आर यू एक्साइटेड टुवर्ड सोशल थिंग्स आर यू एक्साइटेड टुवर्ड पॉलिटिकल थिंग्स अगर कोई ग्रे एरिया डिबेट हो रहा है लाइक फॉर एग्जाम्पल A prostitution, should it be legalized or not? Cigarette, should it be banned or not? Do you have an opinion for something?
But ये बहुत elevated घरों की बात है।
पता है, मेरे को समझ में आ रहा है। It can be anything. You pick out any topic.
तो ना तुम लड़ते हो, debate करते हो घर में तो
नहीं, no. So I was never a debater. मेरे को जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, मेरे को जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है. बट आई हैड एन ओपिनियन फॉर थिंग्स, कैन इट बी डन बेटर, हु आर द बेनिफिशरीज, ये कैसे हो कैसे रहा है. सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन द सिस्टम ऑफ थिंग्स कि ये चीज़ें हो क्यों रही है. एकदम अगर हम सिंपल लेवल पे ले, अगर फॉर एग्जांपल सिक्स्थ क्लास के बच्चे को सोचना है कि इसको लॉ पसंद आ रहा है कि नहीं, तो लेट्स से सिविक्स आर यू लाइकिंग इट, हिस्ट्री आर यू लाइकिंग हिस्ट्री वाली चीज़ें, तीसरा हो सकता है करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट. तो मुझे समझ में आया था कि तो मैंने पूरा नाइन्थ क्लास लेके ट्वेल्थ तक मैंने इंजीनियरिंग ही था, मैं इंजीनियरिंग करने ही वाली थी. एंड हाउ डिड आई चूज लॉ इज मैं AI ट्रिपल ई सबकी एग्जाम दे रही हूँ, BArc की एग्जाम दे रही हूँ, एंड आई जस्ट ओपन द सिलेबस ऑफ क्लैट एंड इट हैड करंट अफेयर्स, ऑल दोज थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट. तो आई हैव ऑलवेज बीन अ किड जिसको घर पर डिस्कशन अच्छे लगते थे, आपको पता है ये हुआ, आपको इट कैन बी अ जोक और एनीथिंग. तो क्लैट का सिलेबस इतना प्यारा था ना, इट हैड करंट अफेयर्स, कौन सा लॉ पास हुआ, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, इसने किसने किसको कब बोला, रफाल की कौन सी डील हुई, एंड ऑल ऑफ दैट वॉज ओ आई एम इंटरेस्टेड ऑल ऑफ दैट. तो आप क्लैट का पेपर उठा के देख लो, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर लॉ स्कूल. पर वंस यू हैव क्लियर्ड क्लैट, दैट्स जस्ट स्टेप वन, एंड देन यू आर गिविंग योर सेल्फ 5 years कमिटमेंट. और मैं तेरे को बता रही हूँ, देर 3300 सीट्स ओनली फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, 1,00,000 बच्चे और भी तो है ना. तो उनको बस ये समझना है कि अगर उन्होंने क्लैट दिया था क्योंकि उनको लॉ में इंटरेस्ट था, तो कीप योर इंटरेस्ट अलाइव, यू विल फाइंड अ टीचर, यू विल फाइंड अ मोटिवेशन, एंड यू विल फिनिश अप लॉ. देन वंस यू आर डन विद इट, अच्छे से प्लान करो पूरी चीज़ें. इट्स नॉट कि आपको फोर्थ ईयर में करना है. अब हर लॉ स्कूल में आपको 9 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट बार काउंसिल बोलता ही आपको करनी ही है, उसको अच्छे से प्लान कर सकते हो. आप NGO में करो, स्टार्टअप में करो, स्टार्टअप में बहुत ढूंढते हैं नए क्रिएटिव फील्ड के बच्चों को, स्टार्टअप में हर बच्चे को काम करना ही चाहिए, दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. कंपनी में जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ. इससे पहले ना आई थिंक आप जब लॉ स्कूल का टेस्ट आपको लॉ स्कूल में आके मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आप 12th के बच्चे हो और आप लॉ में जाना चाहते हो, आप 1-2 हफ्ता बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 घंटे गुजार के देखो whether that environment suits you or not. जैसे CA वाले बच्चे करते हैं कि it is going to be a test job, it is going to be a research वाली चीज़, इसमें बहुत लगने वाला है. आप 2 हफ्ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुजार के देखो, आपको समझ में आएगा कि whether you're made for it or not. You try conversing with people कि actually में the hard questions that you ask, कि कितना कमाते कितना हो लॉ के बाद, ये हम नहीं पूछते हैं. बहुत मैंने नहीं पूछा था, मुझे 5th ईयर तक नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, ये पता था कि क्या नहीं करना है, पर क्या करना मेरे को नहीं पता था. तो डोंट बी लाइक मी, हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. आप रिसर्च जिंदगी भर कर सकते हो कि नहीं, दैट इज वन क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ. और पेशेंस रहने वाला है कि नहीं, इफ यू हैव दीज टू थिंग्स, लॉयर्स का खूब स्कोप है.
गॉट इट, ब्रिलियंट मोनोलॉग. इट्स वेरी एविडेंट कि आप सोलो कंटेंट क्रिएटर हो.
मुझे ऐसा था कि मैं लीगल एजुकेशन और टीचिंग के लिए बहुत पैशनेट हूँ, बिकॉज 6 years आई हैव डन 5 years ग्रेजुएशन, 1 year ऑफ PG. And legal education and teaching is all that has given me validation. So I am very passionate about it. And मुझे इस फील्ड में validation करना ही है.
You are doing great job. मेरे को तो इतने सारे laws और चीजों के बारे में पता ही आपके channel से चलता है. That's why I was interested to call you here. बहुत सारी चीजें जो मुझे कभी पता शायद चलती ही नहीं life में. I got to know because of your channel. So you are definitely adding value. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग योर, और बहुत सारी चीजें समझाने के लिए हमें,
मुझे इतना
इजी लैंग्वेज में, इजी वे में, आई रियली एंजॉयड इट.
मुझे भी बहुत मजा आया, इतनी सारी चीजें तो कर रहा है, मुझे अभी पता चला तो मुझे तो और पसंद आया मिलकर.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मुझे प्लीज कॉमेंट में फीडबैक दीजिए और बताइए कि कैसा आपको ये एपिसोड लगा, ताकि आपके कमेंट्स और फीडबैक पढ़ के मैं अगला एपिसोड और बेहतर तरीके से बना सकूं. आपके कमेंट्स मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेसली पढ़ता हूं, क्योंकि उसी से हम आज तक यहां पहुंचे और इसी तरीके से हम आगे भी जाएंगे. एंड आपके लिए वर्ल्ड का बेस्ट पॉडकास्ट इसे बनाकर ही रहेंगे. बिफोर यू लीव, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कर लो, क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवनस लाइफ and that can add to country's growth to another level. Please don't forget to subscribe this channel, like, comment, share, and until the next episode, keep figuring out.